नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अश्मिता बोल रही हूँ। कल्पना सागर में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे मनुष्य के हृदय में उठने वाले एक खास भाव के बारे में। हम जिक्र करेंगे भक्ति के भाव के बारे में। मैं अगर कहूँ देशभक्ति और ईश्वर की भक्ति भक्ति का एक उदाहरण है तो ये सबसे ज्यादा सटीक होगा। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे एक कहानी का, जिसमें हमें देशभक्ति की साफ झलक दिखाई देती है। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। मुझे पहले जाना होगा सर, मैं ये मौका नहीं खोना चाहता। मुझे पता है मेरे पास गोलियाँ कम हैं, बट गोलियाँ कम हो तो क्या, मुझे अपने जज्बे के सामने सभी फीके दिखाई दे रहे हैं। मैं रुकना नहीं चाहता, मैं दौड़ना चाहता हूँ। आनंद झट से अपने बिस्तर से उठा। उसके माथे पर पसीने आ चुके थे। उसने उठकर पसीने पोछे पास रखे पानी के ग्लास से एक घूंट पानी पिया। ग्लास रखते हुए वो लंबी सांस लेकर कहा, ओफो, आज फिर वही सपना। हाँ, ये वही सपना था जिसे आनंद पिछले एक हफ्ते से रोज सुबह देखता। मानो ये सपना ही उसका अलार्म हो गया। पानी का ग्लास लेकर आनंद अपने कमरे में टहलने लगा। वो चलते चलते पूरब की उस दीवार की तरफ जाकर खड़ा हो गया, जिस पर उसने विजय दिवस के जवानों की ग्रुप फोटो टांग रखी थी। वो तस्वीर देखकर वो 26 जुलाई 1999 का कारगिल वार, जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की और अपना परचम लहराया, वो ये सब याद करके गर्व से फूला न समाता। वो तस्वीर देखकर वो बहुत जोशीला हो जाता। देश के लिए कुछ कर गुजर कर शहीद होने का ख्याल उसे डराता नहीं, मानो उसे स्वर्ग की एक सैर करा आता। वो कल्पनाओं में ही गर्व से फूला न समाता और फौज में जाने का ख्याल ही उसके रोम रोम में मानो ऊर्जा का संचार कर देता हो। जैसे जैसे ज्वाइनिंग डेट नजदीक आ रही थी, बहुत उत्साहित था आनंद। आनंद कभी कभी गर्व से कहता, मेजर आनंद स्वामीनाथन। अपना नाम वो इस तरीके से गर्व से लेता। कभी कभी अकेले में बैठकर खुद से बातें किया करता। कुछ दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई। कुछ सालों तक आनंद ने कई छोटे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जहाँ पर उसने सीखा कि एज ए टीम लीडर उसे उसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, उसे क्या क्या निभाना पड़ता है। उसने बहुत कुछ सीखा अपने सीनियर्स के साथ। और इस बार उसकी टीम को एक ऑपरेशन के तहत सियाचिन भेजा जा रहा था, जहाँ पर खबर मिली थी कि कुछ घुसपैठ हुई है। आनंद ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा मिशन के लिए। उसे गर्व होता कि वो फिर से देश के लिए करने जा रहा है कुछ जो वो करना चाहता है। वहां पहुंचते ही आनंद गाड़ी से उतरा और वहां की धरती पर मत्था टेका। ठीक वैसे ही जैसे वो स्कूल में टेका करता था क्लास में जाने से पहले। आनंद ने माँ की धरती पर मत्था टेक कर कहा, माँ, मैं तेरा ये शुक्रिया कैसे अदा करूँ? मुझे बार बार ये मौका देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ गलत हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अगर इस बार थक जाऊं तो मुझे अपने ही आंचल में सुला लेना। मैं अगर थक जाऊं तो मुझे चीर विश्राम करना है तुम्हारे आंचल में। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और कैंप की तरफ जाने लगा। दूसरी टीम के लोगों से मिला। वो वहां पर मेजर समीर सिंह से मिलकर उसने ऑपरेशन के बारे में कुछ जरूरी रणनीतियां बनाई। तभी लगभग रात के 1 बजे खबर मिली, वहां पर कुछ संदेहजनक हरकत देखने को मिली है। दोनों टीमों ने अपनी जगह ले ली। बड़ी कैंप से 1 किलोमीटर दूर कुछ पहाड़ों के छोटे टुकड़ों के पीछे कुछ हरकत नजर आई। पहली टीम ने मोर्चा संभाला और कुछ ही देर में गोलियों की आवाज से शीतल बर्फीली वादियों में तो मानो तांडव ही मच गया। सवाल केवल हथियार कर रहे थे और जवाब में कभी कोई चीख जाता तो कभी कोई आह निकल जाती। इधर इधर टीम के कुछ 10 से 12 सिपाही ही बचे थे। मेजर समीर ने मेजर आनंद स्वामीनाथन को वहीं पहाड़ी के पीछे रुक जाने को कहा। परिस्थिति को संभालते हुए उन्होंने आनंद को रुकने को कहा। इस पर मेजर आनंद ने कहा, मैं ये मौका नहीं खोना चाहता, लक्ष्य बिल्कुल मेरे सामने है, गोलियां कम है तो क्या मुझे मेरे जज्बे के सामने सभी फीके दिखाई दे रहे हैं। सर, मैं रुकना नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूँ। इतना कहते ही मानो एक क्षण के लिए आनंद का वो स्वप्न जो था वो चरित्र लेने लगा। इसके पहले कि वो कुछ और सोचता, उसने अपने कदम बढ़ा दिए। तभी आनंद को 2 गोलियां लगी उनके कंधे और उनके पैरों में। आनंद झट से जमीन पर गिर गए, मगर हार ना मानते हुए उन्होंने सभी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। तभी एक छिपे हुए दुश्मन ने पीठ पीछे वार किया। मेजर आनंद का शरीर तो मानो छलनी सा हो गया। मेजर के बंदूक में अभी भी 1 गोली शेष बची थी। मानो मेजर ने पहले से सोच रखा था, दुश्मन की 10 गोलियों का जवाब मुझे अपनी 1 ही गोली से देना होगा। ठीक वैसा ही हुआ। मेजर ने अपनी उस 1 गोली का इस्तेमाल किया और दुश्मन के सीने में उतार दी। दुश्मन तो वहीं ढेर हो गया और इधर मेजर की सांसें भी धीमी होती गई। अपनी मृत्यु को निकट देखकर मेजर ने वर्दी से तिरंगा निकाला, अपनी संगीन की नोक पर बांधकर वहीं बर्फ में गाड़ दिया। वो एक वीर की भांति एक जोशीले आवाज में इस तिरंगे को सलाम करना चाहते थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर भारत माता की जय का जोर से नारा लगाया। एक तेजस्वी सिपाही की भांति उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। अब ऐसा हो चुका था मानो मेजर आनंद तो अपने रक्त में बर्फ की सफेदी मिलाकर पूरे सियाचिन को केसरिया ही कर देना चाहते थे। आज मेजर आनंद के शांत पड़े शरीर के सामने एक क्या हजारों हिमालय ने अपने सर झुका दिए थे। इतने में दौड़कर मेजर समीर मेजर आनंद के पास आए। उनकी आंखों से झरझर करके नीर बहने लगे। उन्होंने आंसू पोंछे और एक वीर ने दूसरे वीर को एक वीर की भांति सलाम किया। अब मेजर आनंद ने अपना कर्ज चुकाया। वो माँ के आंचल में हमेशा के लिए विश्राम करने लगे। उनके इस पंचतत्व से निकलकर पंचतत्व में ही मिल जाने तक का सफर कितना गौरवान्वित रहा। तो कुछ यूं अंत हो गया इस कहानी का। ये कहानी मैंने लिखी थी जो मैंने अपनी कल्पना करके लिखी थी, मगर क्या ये सच नहीं कि हमें इस तरह की कल्पनाएं चरितार्थ होते हुए दिखती? कभी कभी तो ये बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक और बहुत ही विभत्स होता है। कहीं पर हम कुछ सुनकर गर्व से फूले नहीं समाते तो कहीं इसका बिल्कुल ही इसका उल्टा होता है। तो हमें अपने हृदय की गहराई से उन्हें सच्ची सलामी देनी चाहिए। जिन्होंने अपने बारे में ना सोचते हुए अपने देश के लिए, अपने देश के मिट्टी के लिए कुछ करते हुए अपने जान की बाजी लगा दी है। तो मेरे अंतिम वाक्य में मैं उन सभी जवानों को, उन सभी शहीदों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाए और जो अभी भी सीमा पर डटे हुए हैं बिना इस फिक्र के कि उनके घर पर कौन है, क्या है, वो आज इस पल जिंदा भी रहेंगे या नहीं। तो चलिए हम अगली कहानी तक भी फिर से विदा लेते हैं। तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।